आर्यन जवाब देने ही वाला था कि जेसिका बीच में बोल पड़ी। उसकी आवाज में हल्का सा तंज था। मुझे लगता है कि ऐसे हाई क्लास प्रोग्राम उसके लिए थोड़े अजीब होंगे, उसने सानवी की तरफ इशारा करते हुए कहा। आदत भी तो नहीं है ना उसे इस तरह की जगहों की। उसके शब्द हवा में तैरते रहे। आर्यन ने जबड़े भींच लिए। उसे एहसास था यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि सानवी की हैसियत और उसके बैकग्राउंड पर किया गया सीधा हमला था। और ये एग्जिबिशन, जो बाहर से कला और संस्कृति का उत्सव लग रही थी, भीतर ही भीतर रिश्तों की दरारें और गहरी कर रही थी। मुझे लगता है किसी पर भी तंज करने से पहले थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए, आर्यन ने शांत लेकिन सख्त लहजे में जेसिका से कहा। इतना कहकर वो वहां लगी तस्वीरें देखने लगा, जैसे अब उसे उस चर्चा में कोई दिलचस्पी ही ना हो। लेकिन हॉल के भीतर फुसफुसाहटें अब भी बंद नहीं हुई थी। नया नवेला जोड़ा है, फिर भी साथ नहीं आए। सानवी क्यों नहीं दिख रही? ये सवाल हवा में तैरते रहे। कुछ ही देर में एग्जिबिशन हॉल में पत्रकारों की एंट्री हो गई। कैमरे, माइक और चमकती फ्लैशलाइट्स के बीच आर्यन, इंद्र, विक्रांत और जेसिका एक साथ खड़े थे। सवालों के जवाब ज्यादातर आर्यन और इंद्र दे रहे थे। एक पत्रकार ने माइक आगे बढ़ाते हुए पूछा, ये एग्जिबिशन काफी चर्चा में है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके पीछे की सोच क्या रही? इंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम चाहते थे कि आर्ट सिर्फ दीवारों तक सीमित ना रहे, बल्कि लोगों की सोच और भावनाओं तक पहुंचे। दूसरा पत्रकार बोला, आर्यन, आपकी कंपनी लगातार सोशल और मॉडर्न आर्ट को सपोर्ट कर रही है, क्या ये कोई नया विजन है? आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, हम नए आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, यही इस एग्जिबिशन का मकसद है। तभी एक पत्रकार ने सवाल का रुख बदल दिया, आवाज में हल्की सी सनसनी थी। एक पर्सनल सवाल पूछना चाहेंगे, उसने कहा, आपकी मिसेज आज यहाँ नजर नहीं आ रही, क्या उन्हें इस तरह के हाई प्रोफाइल इवेंट्स पसंद नहीं है? हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें आर्यन पर टिक गईं। आर्यन जवाब देने ही वाला था कि उसी पल एग्जिबिशन हॉल के एंट्री गेट पर हलचल हुई। फ्लैशलाइट्स का रुख अचानक मुड़ गया। सानवी दाखिल हो चुकी थी। वो लाइट पीच कलर की शिफॉन लहरिया साड़ी में थी। कानों में झुमके हल्के हल्के झूल रहे थे। बाजुओं में शादी का लाल चूड़ा, गले में मंगलसूत्र, खुले बाल और चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था। वो पूरे स्टाइल और ग्रेस के साथ चलती हुई सीधे पत्रकारों के बीच पहुंची। सानवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पसंद है ना मुझे? उसने आगे बढ़कर कहा। सभी पत्रकार मुड़कर सानवी की ओर देखने लगे। कैमरों की फ्लैश एक साथ चमक उठी। सानवी शांति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी और आकर आर्यन के बाजू में खड़ी हो गई। अब माइक और कैमरे दोनों ही उन दोनों की ओर थे। असल में थोड़ा काम था, सानवी ने सहजता से कहा, रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ, इसीलिए मैं थोड़ी लेट हो गई। एक पत्रकार ने तुरंत सवाल दाग दिया, तो आप दोनों कहीं घूमने क्यों नहीं गए? न्यूली मैरिड कपल से यही उम्मीद रहती है? जाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे, आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने सानवी के कमर में हल्के से हाथ डाल लिया। अभी बस थोड़े से काम बिखरे हुए हैं, उसने आगे कहा, और वो काम भी जरूरी हैं। पत्रकारों को यही तो चाहिए था, पर्सनल और प्रोफेशनल का मिलाजुला जवाब। सवालों की रफ्तार तेज हो गई। आप दोनों अपने अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं? सानवी मुस्कुराई। टाइम निकाला नहीं जाता, बनाया जाता है। और जब दोनों एक दूसरे के काम की इज्जत करते हों, आर्यन ने जोड़ा, तो सब आसान हो जाता है, एक महिला पत्रकार ने मुस्कुराते हुए कहा। आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगती है, आर्यन हल्का सा हंसा। जोड़ी का तो नहीं पता, उसने सानवी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मेरी बीवी बहुत प्यारी है। इतना कहते ही उसने सबके सामने सानवी के गाल पर हल्का सा किस किया। फ्लैश तेज हो गई। सानवी एक पल के लिए चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। इस बार उसकी मुस्कान बनावटी नहीं थी। पत्रकार, सानवी जी, क्या शादी के बाद आपके प्रोफेशनल प्लान्स में कोई बदलाव आएगा? सानवी, शादी जिंदगी का हिस्सा है, पहचान नहीं, मेरा काम मेरी पहचान है और वो पहले की तरह चलता रहेगा। पत्रकार आर्यन से, क्या आप सानवी के रेस्टोरेंट पहले ही हिस्सेदारी है? क्या आप आगे और भी काम साथ में करेंगे? आर्यन, बिल्कुल, और भी प्लान बनाएंगे हम साथ में काम करने के। सानवी ने उसकी ओर देखा। पत्रकार, तो क्या भविष्य में आप दोनों साथ में कोई और ज्वाइंट प्रोजेक्ट करेंगे? सानवी, अगर सोच मिले और सम्मान बराबर हो तो क्यों नहीं? आर्यन, और वो सम्मान हमारे रिश्ते की बुनियाद है। फ्लैश फिर चमकी। भीड़ में खड़े लोग तालियां बजाने लगे। बाहर से देखने वालों को ये एक परफेक्ट कपल लग रहा था, लेकिन दोनों जानते थे ये सिर्फ एक पब्लिक मोमेंट नहीं था, बल्कि एक बयान था, अपने रिश्ते के लिए और अपनी अपनी सीमाओं के लिए। तुम तो कह रही थी कि नहीं आओगी, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा,
दोनों सामने लगी तस्वीरें देखने का नाटक कर रहे थे, फिर अचानक कैसे आ गई? सानवी ने नजरें तस्वीरों पर टिकाए रखते हुए जवाब दिया, मैं आपके लिए नहीं आई हूं। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दबाई। मैं जय के लिए आई हूं, सानवी ने आगे कहा। मैं नहीं चाहती कि जय की कस्टडी का केस खराब हो। आपकी जेल जाने की वजह से हम पहले ही बहुत प्रॉब्लम में आ चुके हैं। आर्यन ने सिर हल्का सा झुकाया। ये तो मैं भी जानता हूं कि तुम मेरे लिए नहीं आई हो, उसने शांत स्वर में कहा। चलो अच्छी बात है। वे दोनों तस्वीरों को देखते हुए धीरे धीरे बात कर रहे थे। उनके शब्द इतने धीमे थे कि आसपास खड़े किसी भी इंसान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कैमरों के सामने उनके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी, पर वो मुस्कान अब मजबूरी की थी, न कि खुशी की। दूर खड़ा इंद्र उन्हें देख रहा था। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, एक साथ खड़ा कपल, मुस्कुराते चेहरे, कैमरों की चमक। लेकिन इंद्र बेचैन था। उसे साफ दिख रहा था कि इस मुस्कान के पीछे कुछ और ही चल रहा है। और जैसिका, वो ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलकर राख हो चुकी थी। उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ छलक रही थी, क्योंकि मंच पर खड़े दोनों लोग, चाहे जैसे भी हों, इस वक्त सबकी नजर में जीत चुके थे। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, धीरे धीरे सभी लोग वहां से चले गए। रात काफी हो चुकी थी। इंद्र जब अपने पेंटहाउस पहुंचा और लिफ्ट से बाहर निकला, तो सामने का दृश्य देखकर वो ठिठक गया। पेंटहाउस के दरवाजे के पास अपने सूटकेस पर बैठी हुई कृति थी, थकी हुई, उलझी हुई और अकेली। तुम यहां? इंद्र ने हैरानी से पूछा। कृति ने उसकी ओर देखा और बिना रुके एक ही सांस में बोल पड़ी, हाँ, मेरी दीदी और रिया से लड़ाई हो गई, मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। मेरी फ्रेंड शहर से बाहर है, मुझे लगा था उसके पास चली जाऊंगी, कोई और जगह थी ही नहीं। आलिया भी चली गई है। उसकी आवाज में सफाई कम और मजबूरी ज्यादा थी। इंद्र ने माथे पर हाथ फेरा। तुम ऐसी बातें करती ही क्यों हो कृति? उसने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। पहले भी तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी और अब फिर लड़ाई करके यहां आ गई हो। कृति की आंखें नम हो गई। प्लीज इंद्र, इस वक्त मेरे पास जाने के लिए सच में कोई जगह नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। कुछ पल की चुप्पी के बाद इंद्र ने गहरी सांस ली। ठीक है, उसने कहा, अंदर आ जाओ। कृति ने राहत की सांस ली और उसका सूटकेस उठाकर उसके साथ अंदर चली गई। उस रात दोनों पेंटहाउस में गिरुकने वाले थे। जैसे ही वे लिविंग हॉल में पहुंचे, कृति ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था, सोफे पर फाइलें, टेबल पर कप और कुर्सी पर जैकेट। कृति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे तो लगता था कि मैं ही कमरा बिखेर कर रखती हूँ, लेकिन तुम्हारा घर भी कुछ कम नहीं है। इंद्र मुस्कुरा दिया। मैं भी ऐसा ही हूँ, उसने सादगी से कहा। फिर उसने सामने वाले कमरे की ओर इशारा किया। तुम उस कमरे में चली जाओ, आराम कर लो। कृति चुपचाप सिर हिलाकर अपने कमरे की ओर चली गई। इंद्र भी अपने कमरे में चला गया। इमरान और सारा देर रात घर पहुंचे थे। आज का दिन उन्होंने पूरी तरह एक दूसरे के साथ बिताया था। फिल्म देखी, बाहर डिनर किया और बिना किसी जल्दबाजी के हर पल को एंजॉय किया। घर पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो चुकी थी। जैसे ही इमरान ने गाड़ी रोकी, उसने बगल की सीट की ओर देखा। सारा रास्ते में ही सो चुकी थी।
उसका सिर हल्के से सीट पर टिका हुआ था और चेहरा पूरी तरह शांत लग रहा था। इमरान ने कार का इंजन बंद किया, लेकिन जानबूझकर कोई आवाज नहीं की। वो कुछ पल यूं ही उसे देखता रहा। सारा अभी भी नहीं जगी थी। नींद में भी उसका चेहरा उतना ही सुकून भरा लग रहा था।